नितहि नित मन माहि विचारो नितहि नित मन माहि विचार संकट रूप सकल संसार संकट रूप सकल संसार
संकट रूप सकल संसार संकट रूप सकल संसार
एक प्रभु पर पावे विश्वास एक प्रभु पर पावे विश्वास
एक प्रभु पर पावे विश्वास एक प्रभु पर पावे विश्वास
जन्म जन्म की मिटे त्रास जन्म जन्म की मिटे त्रास
जन्म जन्म की मिटे त्रास जन्म जन्म की मिटे त्रास
प्रभु शरण जो हिये विचारी प्रभु शरण जो हिये विचारी
प्रभु शरण जो हिये विचारी प्रभु शरण जो हिये विचारी
भरम जाल सब मिटे खुआरी भरम जाल सब मिटे कुआरी
भरम जाल सब मिटे कुआरी भरम जाल सब मिटे कुआरी
वास न जाल का होवे अभाव वास न जाल का होवे अभाव
वास न जाल का होवे अभाव वास न जाल का होवे अभाव
निर्मल प्रीत जो प्रभु की पाओ निर्मल प्रीत जो प्रभु की पाओ
निर्मल प्रीत जो प्रभु की पाओ निर्मल प्रीत जो प्रभु की पाओ
सब संकट का एक उपाय सब संकट का एक उपाय
सब संकट का एक उपाय सब संकट का एक उपाय
प्रभु चरणी लियो प्रीत कमाए प्रभु चरणी लियो प्रीत कमाए
प्रभु चरणी लियो प्रीत कमाए प्रभु चरणी लियो प्रीत कमाए
माया भरम असगा आहसे सो जन निस्तर पाए मंगत निर्मल प्रीत से जो प्रभु का नाम धियाए माया भरम असगाह से सो जन निस्तर पाए मंगत निर्मल प्रीत से जो प्रभु का नाम धियाए नित ही नित मन माही विचार संकट रूप सकल संसार ये निर्णय सारे सत्पुरुषों का है सारे शास्त्रों का है या जिनकी बुद्धि में ईश्वर का महत्व है या ईश्वर के विज्ञान को जो बुद्धि समझती है वहां ये कोई वहम नहीं होता कि संसार सुखरूप है। ये दो बड़े स्पष्ट निर्णय हैं, एक संसारियों का बुद्धि का निर्णय, एक सत्पुरुषों की बुद्धि का निर्णय या शास्त्रों का निर्णय। सारे संसार को संकट रूप कहे और जो हम लोग संसार को देख रहे हैं वो कहते हैं कि संसार है तो सुखरूप, सारे संसार में सुख फैले हुए हैं, मुझको यदि मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये हमारी बुद्धि का निर्णय है, जबकि वाणी कुछ दूसरा निर्णय कर रही है। जगत में वस्तु कोई ना मीता जा को परस होवे प्रसन्न चीता। जगत में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं ऐ मीत, मीत कहते हैं मित्र को, मित्र हमको अच्छा लगता है, हम उसका भला चाहते हैं। तो वाणी हमारी भलाई के लिए कह रही है कि जगत में वस्तु कोई ना मीता जा को परस होवे प्रसन्न चीता, तेरा चित्त प्रसन्न हो जाए ऐसी वस्तु संसार में कोई है ही नहीं। तो अब बताइए सांसारिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है। तो यदि मैंने ये अध्यात्म विद्या साइंस की तरह से नहीं सीखी, विज्ञान की तरह से नहीं सीखी तो मेरी बुद्धि का निर्णय बदलेगा कैसे? तो मेरी बुद्धि उसी बालक की तरह सारी जिंदगी बनी रहेगी। जो बालक अभी पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों का अध्ययन उसने नहीं किया है, लेकिन सुख दुख वो जानता है। 3-4 साल का बालक बोलने लगता है, समझने लगता है, जो चीज उसके मन पसंद होती है उसको देख के खुश होता है, जो मन के विरुद्ध होती है उसको देख के दुखी होता है, सब कुछ जानता है। लेकिन बुद्धि का निर्णय ठीक क्या है ये वो नहीं जानता। तो बालक की बुद्धि मन के वशीभूत रहती है, या यूं कहिए कि मन से प्रेरित होती है। और हम सब जानते हैं कि मन में उठता क्या है, एक संकल्प उठता है, उस संकल्प को हम इच्छा कह देते हैं, ये चीज मुझको मिल जाए तो मजा आ जाए, खुशी मिल जाएगी। तो बालक बुद्धि क्या करती है, वो जहां उसके अंदर इच्छा होती उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विचार उसके अंदर है नहीं, उसके अंदर एक संकल्प उठ गया, ये वस्तु मुझको मिल गई, खाने की चीज मिल गई, देखने की चीज, खेलने की चीज मिल गई तो आनंद आ जाएगा। ये कल्पना उसके मन में उसके संस्कारों से उठ रही है, संस्कार उसके अंदर है ये बात, इस बात जो पहले भी उसने उस वस्तु को भोगा है। तो इसीलिए उसको कोई सिखाने की किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, आप वो वस्तु दे दीजिए उसका रोना पीटना बंद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन क्या माता पिता, कोई भी समझदार माता पिता है तो बच्चे की इस तरह की हालत देखकर, मान लिया घर में इतना पैसा है कि आप सारी इच्छाएं उसकी पूरी कर सकते हैं, ये क्या माता पिता यदि वो बुद्धिमान है तो इस बात को देख के खुश होंगे। वो जानते हैं कि इसकी यदि हमने इच्छा इसी तरह पूरी करते रहे तो जिंदगी इसकी तबाह हो जाएगी, ये कहीं का नहीं रहेगा। जबकि बच्चे के दृष्टिकोण से देखिए उसको तो खुशी मिल रही, मेरे पास कैपेसिटी है, घर में पैसा है, साधन है, तो मैं क्यों ना बच्चों को खुश रखूं मैं। लेकिन जो माता पिता बुद्धिमान है वो जानते हैं इस तरह का जो जीवन का तरीका है, जीने का तरीका है, ये तो इसकी भविष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसीलिए हम जो बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं या हम जो बड़े हो गए हैं, हमारी बुद्धि में ये सामर्थ्य आ गई है कि मेरे जीवन में कौन सी चीज मेरे लिए लाभदायक होगी, कौन सी चीज नुकसानदायक होगी, इसको मैं सीख सकता हूं, मेरी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है। तो सत्पुरुष हमको सिखाते हैं। फिर मनुष्य का जो रियल डॉक्टर है, जो उसको वो विचार देता है जिससे उसकी जीवन, जिसका उसका जीवन सफल होता है और बर्बादी से वो बच जाता है, तो ऐसा परफेक्ट डॉक्टर ही गुरु कहलाता है, अवतार कहलाता है। तो उन्हीं का ज्ञान शास्त्रों में लिखा होता है, वाणी के रूप में प्रकट होता है। तो मैं जब उस ज्ञान को सीखता हूं तब वो दूसरी बात करे, वो कहते संसार के जितने भी सुख हैं 100%, जिसको हम इंद्रिय भोगों के सुख कहते हैं या मानसिक सुख कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय भोगों के द्वारा मन की कल्पना ही तो पूरी होती है, मन की वासना ही तो पूरी होती है और बुद्धि प्रसन्न होती है, जिसको हम कहते हैं चित्त प्रसन्न हो गया। क्योंकि चित्त उसको कहते हैं जिसमें चेतना है, जैसे शरीर में यदि कहीं किसी में चेतना है तो बुद्धि के अंदर है, मेरे अंदर है। इस चेतन बुद्धि को ही जीव कहा जाता है। सारी प्लानिंग ये चेतन बुद्धि ही करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ठीक है क्या गलत है, मन प्लानिंग नहीं करता। मन के अंदर तो आपके जो संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण एक तरंग उठती है जिसको हम इच्छा कहते हैं। वो कैसे पूरी होगी, वो पूरी होनी चाहिए भी नहीं होनी चाहिए, ये सारी बात फिर बुद्धि सोचती है, बुद्धि निर्णय करती है, और उस मन की तरंग को, उस मन की डिजायर को बुद्धि फिर अपने तरीके से पूरी करने की कोशिश करती है। जब पूरी हो जाती है तो इसको खुशी मिलती है, पूरी नहीं होती है तो इसको बेचैनी मिलती है। ये सादा सा सिंपल सा तरीका है संसार में जीवन जीने। लेकिन जब विज्ञान की बात आती है, मेरे विज्ञान की बात आती है, तो सत्पुरुष क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तेरे संसार के जितने भी भोग हैं 100%, संसार के जितने भी इंद्रिय भोग हैं, जिसकी कल्पना तेरे मन में उठती है उन भोगों को भोगने की, तो सारे सांसारिक भोग जो हैं वो 5 विकार के अंतर्गत आते हैं, इसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा जाता है। इसका मतलब मेरे पास यदि सामर्थ्य है उन भोगों को पूरा करने की और मैं उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको पूरा कर रहा हूं, तो मुझको इस विज्ञान का पता होना चाहिए कि मेरे अंदर इन 5 विकारों से कोई ना कोई विकार जरूर प्रबल होगा, जरूर विकसित होगा। क्योंकि जब 5 तत्व की प्रकृति है ये और उनकी 5 तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उन को अनुभव करने के लिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही तो आप संसार के भोग भोगते हो। आंख से देखते हो, कान से सूखते हो, जीवा से स्वाद लेते हो, सारे जो है 5 ज्ञानेंद्रियों के भोग हैं। आप इस शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिया स्थित हो उनका उपयोग ही तो आप करते हो। तो ये न संसारिक सुखों के जो प्रभाव हैं वो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब बताइए कि जितना भी मेरा सांसारिक जीवन है ईश्वर बीच में से माइनस कर दिया जाए तो ये 5 विकार का जीवन है, इसीलिए मनुष्य को पशु कहा जाता है। बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो कोई। तो इंद्रिय भोग का जीवन ही तो पशु जीवन है, जहां बुद्धि का प्रयोग है ही नहीं कोई। मैं बुद्धि का प्रयोग लंबी लंबी प्लानिंग करने के लिए करता हूं, लंबी लंबी एजुकेशन लेता हूं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करता हूं, पैसा कमाने की कोशिश करता हूं। किस लिए? इन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों के भोगों को भोगने के लिए। तो पशु इतनी प्लानिंग नहीं करता, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करता, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर संकल्प उठता है भोगों को भोगने का, और अपने हिसाब से वो पुरुषार्थ भी करता है, जो मिल गया भोग लेता है, नहीं मिल गया अंदर से मानसिक क्लेश वो भी जीता है। तो मुझ में पशु में ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल एक ही है कि मेरी बुद्धि ईश्वर से प्रेरित हो सकती है, गुरु से प्रेरित हो सकती है, शास्त्रों से प्रेरित हो सकती है, पशु की बुद्धि प्रेरित नहीं हो सकती, उसको ये कैपेसिटी दी ही नहीं गई। मुझ में और पशु जीवन में यहां आके डिफरेंस पता लगता है कि मेरे लिए ये बात आ रही है कि जगत में वस्तु कोई ना मीता, जाको परस होवे प्रसन्न चीता। तेरा चित्त प्रसन्न हो जाए, जैसे किसी माता पिता का बालक, उनके अंदर इच्छा थी कि मैंने इसको डॉक्टर बना दूं मैं, और अपने पुरुषार्थ से उन्होंने उसको उसकी एजुकेशन की व्यवस्था कर दी, डॉक्टर बना भी दिया, तो क्या होगा? उनका चित्त प्रसन्न होगा नहीं होगा? कि हमारा लक्ष्य पूरा हो। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो डॉक्टर का क्या काम है? जो दुखी लोग हैं उनका इलाज करना और अपनी जीव का चला लेना। लेकिन क्या डॉक्टरी का पेशा यहीं तक सीमित है? ऐसा ही हमको दिखाई पड़ता है। अब देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है इस डॉक्टरी पेशे के अंदर। बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स जो हैं, उन्होंने अस्पताल खड़े कर लिए और महंगी महंगी सैलरी दे के डॉक्टर्स एम्प्लॉय कर लिए उन्होंने, और उनको वो टारगेट देते हैं कि तुमने ये चीज तो लिखनी ही है, इतने इतने तो ऑपरेशन करने ही है, कोटा पूरा करना है। जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं है वहां उनके ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, उनसे पैसा लूट लिया जाता है, कष्ट भी दिया उसके शरीर को और पैसा भी लूट लिया उसको। तो कौन सा प्रोफेशन है? देखिए, ये सांसारिक बुद्धि है और सांसारिक बुद्धि के नाते ये सब जस्टिफाइड है, सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और पब्लिक तो इन्वॉल्व है ही उसके अंदर, सब पब्लिक में ही आते हैं। तो अब बताइए, जो प्रोफेशन मनुष्य के दुख दूर करने के लिए था, वो प्रोफेशन मनुष्य का शोषण करने के लिए हो गया, ये कौन सा रास्ता पकड़ा? ये वही बात है, पांच विकार महादुखदायी, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन नहीं जीव पाए निस्ता। पांच विकार, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार महादुखदायी है, सारा संसार जल रहा है इसके अंदर और तू इसके लिए जी रहा। तो इसीलिए यदि मैंने इस विज्ञान को नहीं सीखा, क्योंकि ये विज्ञान संसार में नहीं है, ये विज्ञान करतार के पास है, ईश्वर के पास है, और उनके जो अवतार हैं, जो मनुष्य रूप में प्रभु आते हैं, उसको हम सदगुरु कहते हैं, और जो ये वाणी ये ज्ञान है उस ये सदगुरु का मार्गदर्शन है। तो मनुष्य जन्म लेकर यदि मैंने इसको साइंस की तरह से नहीं सीखा, क्योंकि मेरा इसमें कल्याण है, मेरे माता पिता भी संसारिक है, घोर संसारिक है, मेरी जिंदगी को अपने हाथों से खुद ही बर्बाद कर देंगे, उनको अकल नहीं है इस बात की, तो मैंने अपना भला बुरा खुद सोचना है। मैं बड़ा हो गया, मेरी बुद्धि विकसित हो गई, अब मैं पढ़ सकता हूं, सीख सकता हूं, तो मैंने उन लोगों की संगत धारण करनी है जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है। संसार में यदि सबसे कीमती वस्तु कोई है तो ये वो अध्यात्म विद्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मैंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी अकल से सीखना ही सीखना है, क्योंकि जिंदगी मेरी बर्बाद हो। जो गलती कर रहा है वो तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही रही है, क्योंकि मैं अपने माता पिता का ही शिकार क्यों हूं? ये तो मैंने सोचना है। मेरे माता पिता यदि अज्ञानी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अज्ञानी बन जाऊं। इसीलिए ये स्वतंत्र मार्ग है, क्योंकि मैंने मरना है, मैंने ही जन्म लेना है। मैंने जो संस्कार तैयार किए हैं बचपन से, मुझे वो संस्कार मिलेंगे विरासत के अंदर। और जो कर्म किए मैंने, दूसरों को सुख देने वाले या दुख देने वाले, धोखा देने वाले या कल्याण करने वाले, उन सबका फल भी मुझको अगले जन्म में भोगने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं वो कर्म क्यों ना करूं, वो संस्कार क्यों ना बनाऊं, जिससे इस जन्म में भी मुझको शांति मिले और अगले जन्म में भी शांति का स्रोत मेरे लिए खुला हुआ हो। तो उसके लिए एक ही चीज है, प्रभु शरण जो हिए विचारी, भ्रम जाल सब मिटे ख्वारी। ये सारा का सारा संसार भ्रम जाल है, ये रियलिटी नहीं। भ्रम क्यों? जिस सपना जैसे रात का ऐसे जगदा की। ये मन से उत्पन्न जो संकल्प है इसको संकल्प सृष्टि कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में मेरे मन के संकल्प से पूरी की पूरी सृष्टि पैदा हो जाती है, उसका मैं अनुभव करता हूं, उसमें सुख दुख में मुझको प्राप्त होते हैं। जागने के बाद मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं, वो तो मेरे मन का संकल्प था। इसी को वाणी भ्रम करके कहे। भ्रम क्यों? क्योंकि जो काल्पनिक है उसको मैं वास्तविक समझूं तो ये मेरा भ्रम है, कल्पना को कल्पना ही समझूं ये मेरा ज्ञान है। इसीलिए ये वाणी सारा आपको विज्ञान सिखा रही है। आप लोग कैंप भी करते हो तो वहां भी ये विज्ञान सारा सिखाया जाता है कि तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। बुद्धि के नीचे मन है जो जिंदगी का सर्वनाश कर देता है, और बुद्धि के ऊपर ईश्वर है जो आनंद का सागर है। तो अध्यात्म विद्या बुद्धि के अंदर वो ज्ञान पैदा करती है जो बुद्धि को ईश्वर से जोड़ती है, और संसारी विद्या मेरे अंदर वो ज्ञान पैदा करती है जो बुद्धि को मन से जोड़ती है। अब बताइए, मनमुखी जीवन तो बालक का जीवन है, बच्चे का जीवन है, अज्ञानी का जीवन है। मैं कैसे दोनों हाथों से बर्बाद कर रहा हूं संसार की नकल करके, क्योंकि सब ऐसी कर रहे हैं, मैं भी ऐसी करता हूं। लेकिन विचार बुद्धि चाहिए, इसलिए मैंने खुद सीखना है क्या ठीक है क्या गलत है। तो इसीलिए मैं अपने जीवन की बात देखूं यदि, तो 20 वर्ष की आयु में जब गीता हाथ लगी, उसका अध्ययन किया, तो वहां से पता लगा मनुष्य जन्म तो ईश्वर को जानने के लिए मिला है। अब कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, कुछ अच्छे कर्म करके आए होंगे, तो बुद्धि का वही निर्णय हो गया देन एंड देयर। कोई संगत नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई गुरु नहीं, फिर भी निर्णय हो गया, अच्छा इस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है, ये तो मैंने जिंदगी में जरूर करना है। अब बताइए, ना मेरा कोई गाइड था, लेकिन उस दिन से फिर मैंने अध्यात्म विद्या पढ़ना नहीं छोड़ी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करी, इंजीनियरिंग किया, सर्विस करी, परिवार बसाया, सब कुछ किया, लेकिन अध्यात्म विद्या नहीं छोड़ी। उस समय ना मेरा कोई गुरु था, ना कोई आश्रम था। तो अब बताइए कि वर्तमान जन्म में आपको एक शास्त्र पढ़ के निर्णय बुद्धि का हो गया आपका, और वो आज तक छूटा ही नहीं कभी। आज भी यदि मैं देखूं, लगभग 2 घंटे पर डे आज भी शास्त्रों का स्वाध्याय होता ही होता है। तो अब बुद्धि जानती है इस बात को कि अध्यात्म की कितनी बारीकी है, जैसे कि इस संसारिक साइंस की कितनी बारीकी है। आइंस्टीन कहता है कि एक रिसर्च करने में इजगल टू एम सी स्क्वायर, जो एनर्जी इक्वेशन उसने रिसर्च की, एटॉमिक जो एटम एक्सप्लोड करता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, उसको नोबेल प्राइज भी मिला उसके ऊपर। लेकिन जो उससे पूछा गया कि यदि आपकी मृत्यु हो जाए और आपका पुनर्जन्म हो तो आप क्या बनना चाहोगे, तो वो कहता है मुझको पता नहीं पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, यदि होता है तो कभी भी मैं वैज्ञानिक बनना नहीं चाहूंगा। बोले क्यों, आपको तो सारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनाम मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया, इतना पैसा मिल गया। बोले ये मैं जानता हूं कि एक सिद्धांत की खोज करने में मेरा पूरा जन्म खत्म हो गया, मुझको क्या मिला, सारी जिंदगी मेरी लेबोरेटरी के अंदर ही बीत गई, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं नहीं जानता कि सुख क्या होगा। दुनिया ख्वाब देख रही है आइंस्टीन के, काश मेरा बच्चा भी आइंस्टीन बन जाए, और जो आइंस्टीन बना वो क्या कह रहा है। तो इसीलिए जब विचार बुद्धि आपके अंदर पैदा होती है तब आपको पता लगता है कि मैंने जहर घोला अपने जीवन में अपनी अज्ञानता के कारण। तो इसलिए गुरु आपको कहता है, वाणी आपको कहती है, एक मौका मिला है आपको इस घोर कलियुगी संसार में पैदा होने के बाद भी, आप एक मौका मिल रहा है बुद्धि को जागृत करने का। यदि मैंने इस निर्णय को नहीं सीखा कि वाणी तो झूठ नहीं बोलेगी, लोग मुझे बहका सकते हैं, माता पिता मुझे बहका सकते हैं, वाणी मुझे क्यों बहकाएगी, ईश्वर मुझे क्यों बहकाएगा, गुरु मुझे क्यों बहकाएगा यदि वो रियल है। तो इसलिए ये गुरु वाणी आपको निर्णय दे रही है, जगत में वस्तु कोई न मीता, जाको परस होवे प्रसन्न चीता। पूरे जगत में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिसको पाप प्राप्त करके तेरा चित्त प्रसन्न हो जाए। चित्त कहते हैं, याद रखिए बुद्धि को, बुद्धि को कभी पछताना ना पड़े। मन जड़ चीज है, बुद्धि में चेतना है, लेकिन बुद्धि जब मन के संकल्पों को फॉलो करती है, विचार नहीं करती कि ये पूरा करना चाहिए या नहीं पूरा करना चाहिए, इसका भविष्य मेरा, इस इच्छा को पूरा किया भविष्य मेरा कहाँ जाएगा, इस बुद्धि में ये विचार नहीं है, वो बुद्धि तो अंधी है। क्योंकि बालक का मन जैसे अंधा होता है, उसको कुछ पता नहीं। माता पिता ध्यान रखते हैं कि क्या चीज नुकसान करेगी, क्या चीज को फायदा करेगी। इसीलिए ये वक्त मुझको मिला मानव जन्म का, इस मानव जन्म को लेकर मैं अपने इस विज्ञान को, जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, मैंने गहराई से पूरी कोशिश करके नहीं सीखा। मैं पागलों की तरह से दुनिया की नकल कर करके कुछ भी करता रहा, जैसे कि डॉक्टर्स का आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया थे कि जो मानव जाति के दुख दूर करने के लिए प्रोफेशन बना था, आज वो प्रोफेशन उन बीमारों को, उन गरीबों को लूटने के लिए हो गया। कैसी ये सांसारिक बुद्धि है। एक डॉक्टर के एडमिशन के लिए आजकल एक एक करोड़, दो दो करोड़ रुपए देने पड़ते हैं एडमिशन के लिए। तो वो सोचता है, जब मैं 2 करोड़ रिश्वत देकर एडमिशन करा है, मैंने इतनी मेहनत करी है, तो मैं क्यों ना कमाऊं पैसा। फिर उसकी नींव ही पाप पर पड़ी है, सारी जिंदगी पाप की ही कमाई करता है और बर्बाद होकर संसार से विदा हो जाता है। क्योंकि कर्म जो कर लिया उसका फल तो उसने भोगना ही भोगना है, वो नहीं, उससे नहीं बच सकता। कोई दुनिया की एग्जाम्पल काम नहीं होगी, इस दुनिया ऐसे करती थी इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि प्रभु उसके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी। और उस प्रभु ने ये वाणी प्रकट की है, लिखित रूप में प्रकट की है। ये मेरी ड्यूटी बनती थी कि मेरा किसमें कल्याण है, मैं वो चीज सीखूं। यदि मैं केवल निकल करके ही लोगों की जीता रहा और लक्ष्य बनाता रहा, पैसा इकट्ठा करता रहा, कमाता रहा, तो याद रखिए मुझसे बड़ा पागल इंसान धरती पर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पाप की कमाई करके जा रहा हूं। इस जन्म में भी दुख भोगे मैंने, अगले जन्म में भी इससे बड़े दुख भोगूंगा, क्योंकि गलतियां की मैंने। तो इसलिए याद रखिए, संसार में जो हम वहन करके जी रहे हैं कि सफल जीवन, तो एक लाइन बस वाणी की याद रखिए, जगत में वस्तु कोई ना मीता, जाको परस होवे प्रसन्न चीता। इसीलिए जगत की वस्तु छोड़कर यदि तूने अंतर्यामी प्रभु के प्रेम की कमाई करी, उसके नाम की कमाई करी, तब तेरी ये विचार की आंख खुल जाएगी, सतबुद्धि खुल जाएगी, तब ये वाणी ये विचार तुझको हिट करेंगे, तो इसको महत्व देगा। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं कि 20 साल की एज में लक्ष्य तो बन गया, लेकिन अध्यात्म की कुछ पता नहीं, मतलब कुछ नहीं पता था। खुद ही किताबें खरीदता था, खुद ही पढ़ता रहता था, लेकिन पढ़ाई मैंने कभी नहीं छोड़ी, संसार के सारे काम करता रहा, तो हुआ क्या फायदा। आज वो सारा विज्ञान इस बुद्धि के अंदर आईने की तरह क्लियर है। बुद्धि को कोई वहम नहीं है कि ईश्वर अंतर्यामी है। और उस प्रभु की याद करके जब प्रारंभ की थी तो कोई मजा नहीं आता था, लेकिन आज बुद्धि की अंदर वो आनंद पैदा होता है, चित्त प्रसन्न होता है। आज बुद्धि को पता है कि प्रसन्नता यदि कहीं है तो ईश्वर के याद में है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। तो जैसे जैसे अंदर आपकी प्रगति होती है, ईश्वर के नजदीक पहुंचते हो, तब ये शास्त्र आपको, ये ज्ञान के मोती नजर आते हैं, इसमें जीवन की सफलता नजर आती है। फिर आपका मन करता है, मैं अपने बच्चे को भी लगाऊं इस मार्ग पर, मैं अपने मित्र को भी इस मार्ग पर लगाऊं, मैं समाज में भी कुछ ऐसा काम करूं कि लोग जो है इसका फायदा उठाए। इसीलिए जीवन की सफलता सत्मार्ग पर चलने में है, संसार की निकल करके अपने जीवन को डुबोए नहीं कि भोग विलास में इकट्ठे कर लेता हूं, पैसे कमाई ज्यादा कर लेता हूं, जीवन सफल हो जाएगा। याद रखिए, ये आपका पापी जीवन होगा। जितने ज्यादा सफल संसार में होगे उतने ही बड़े पापी होगे, क्योंकि ये आपने अज्ञानता में आकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों की कमाई की, इनकी फसल बोई है। ये अगले जन्म में भी आपको बर्बाद करेंगे, इस जन्म में भी आप इसी कमाई में ही सारी जिंदगी आपने बेचैनी में ही काट दी। क्योंकि जितना बड़ा काम करोगे, जितने बड़े पैसे कमाओगे, जितना ज्यादा संसार में बिजी रहोगे, ये आप मानसिक बेचैनी लेके जी रहे हो, लेकिन आपके पास वो सद्बुद्धि नहीं है, उसका एनालिसिस कर नहीं सकते आप। इसीलिए आपकी आयु निरर्थक बीत रही है। बल्कि सत्य बात आपके बारे में कही जाए, वो कहते हैं कि बिना विवेक मनुष्य जो हुई पशु समान जीवन सुख हुई। पशु समान ही नहीं है, एक जगह महाजी ने खुद लिखा है ये पशु से भी नीच जीवन है, क्योंकि पशु पाप नहीं करता, मैं पाप कर रहा हूं, इस बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर रहा हूं, ये मेरे लिए पाप है। मनुष्य जन्म देने के बाद भी मैं उसका दुरुपयोग कर रहा हूं, भोग के लिए जी रहा हूं, ये पापी जीवन है, इसलिए मैं अपना पतन करके संसार से जाऊंगा। इसलिए आज तक भी यदि मैं होश में नहीं आया तो अब मुझे होश में आ जाना चाहिए, प्रभु का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। ओम धम्म सत्यम।